नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अस्त लक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक झलक दिखेगी। पूर्वोत्तर की पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। यह कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन के अवसरों और सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के अनूठे उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक असाधारण मंच के रूप में कार्य करेगा। यह महोत्सव 8 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से प्रेरणा लेता है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। 250 से अधिक कारीगर 34 GI टैग वाले वस्तुओं सहित अद्वितीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए PM ई विद्या DTH चैनल नंबर 31 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन HI प्राप्तकर्ताओं, विशेष शिक्षकों, ISL प्रमाणित इंटरप्रेटर्स और हियरिंग इम्पेयर्ड समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए काम करने वाले संगठनों ने भाग लिया। इस नए DTH चैनल की संकल्पना ISL को एक भाषा और एक स्कूली विषय दोनों के रूप में बढ़ावा देने के लिए की गई है, ताकि इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि प्रसार भारती प्रसारण क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे नेटवर्क का डिजिटलीकरण, नवीनतम उपकरणों को अपग्रेड करना आदि को अपनाकर आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क को लगातार उन्नत बनाता है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने डायरेक्ट टू मोबाइल प्रसारण प्रौद्योगिकी के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन भी किया है। D2M प्रसारण एक नई प्रौद्योगिकी है जो प्रसारण अवसंरचना का लाभ उठाकर बिना सिम के मोबाइल फोन और स्मार्ट उपकरणों तक प्रसारण संकेतों को सीधे पहुंचाती है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि D2M नेटवर्क का उपयोग जनता को निशुल्क या सस्ती लागत पर सूचना उपलब्ध करने, शिक्षित करने और मनोरंजन सामग्री उपलब्ध करने के लिए किया जा सकता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कामना की कि यह दिन हमारे बहादुर सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता और सम्मान को मजबूत करे, जो हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि 1949 में अपनी स्थापना के बाद से 7 दिसंबर को वर्दीधारी पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, जिन्होंने साहसपूर्वक राष्ट्र की रक्षा की है और सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह दिन उन वीर नायकों के प्रति हमारी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनुस्मारक है, जो कर्तव्य की पंक्ति में अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। उन्होंने कहा कि यह शहीदों, विकलांग सैनिकों और वीर नारियों के परिवारों को उनके अपार बलिदानों को स्वीकार करते हुए समर्थन देने का अवसर भी प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश के राज्य महिला आयोग की एक टीम ने 5 और 6 दिसंबर को NCW कार्यालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव मीटिंग में भाग लिया। चर्चा में NCW और राज्य आयोगों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पुलिस वकालत, अनुसंधान और क्षमता निर्माण में चल रहे सहयोग के लिए संचार और तंत्र स्थापित करना शामिल था। इस बैठक में महिला कल्याण की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की, जिसमें लिंग संवेदीकरण और पोष शिकायत निवारण तंत्र और महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास पर परियोजनाएं शामिल है। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नाहरलगन ने जमीनी स्तर पर कानून लागू करने वाले पुलिस अधिकारियों और अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा अधिकारियों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 पर 2 दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। कल संपन्न हुए इस कार्यक्रम में 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।